समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह आ चुकी है और आप जुड़ चुके हैं मेरे यानी सर फिरोजी के साथ अपने पसंदीदा न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में। और प्रोग्राम के इस अंक में मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
हेलो सर फिरोजी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल यू लवली फोक्स ट्यून इन टू अस दिस वेडनेसडे मॉर्निंग। न्यू डे, न्यू बिगिनिंग, स्माइल अवे एंड विश फॉर सम कूल डेज। Right now, friends, we are all set with our news magazine program, Aaj Savere. So we start with some news headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। वे नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री विश्व धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों का भी दौरा करेंगे, जिनका नवनिर्मित विश्वविद्यालय से गहरा संबंध है। नालंदा विश्वविद्यालय की कल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित विश्वविद्यालय का नया परिसर 450 एकड़ में फैला हुआ है। पर्यावरण संरक्षण की थीम पर आधारित परिसर को नेट जीरो ग्रीन कैंपस बनाया गया है। विश्वविद्यालय में छात्रों के पहले बैच का नामांकन 2014 में किया गया था और राजगीर में एक अस्थायी परिसर में कक्षाएं शुरू की गई थीं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 6 संस्थान हैं। वैश्विक शांति को बढ़ावा देने और भगवान बुद्ध के दर्शन पर शोध के लिए विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति अध्ययन संस्थान की स्थापना की है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट एग्रीकल्चर विल प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग इंडिया World's third largest economy. The Prime Minister was addressing a large gathering at PM Kisan Samman Sammelan, Varanasi. He said that the central government is committed to enhance the living standard of the farmers and increasing their income is the priority of his government. Mr. Modi released the 17th installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, amounting to more than 20,000 crore rupees to around 9.26 crore farmers during the function. Speaking on the occasion, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that the goal of the government is to increase production and help farmers in reducing the input cost along with providing better price to their products by giving proper MSP.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमरीकी समकक्ष जैक सलविन ने नई दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और अमरीका के नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और विनिर्माण, टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ सरकारों, उद्योग और शिक्षा जगत में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। वे स्वच्छ ऊर्जा, महामारी संबंधी तैयारियों और अन्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
Chief of Naval Staff CNS Admiral Dinesh K. Tripathi called on Prime Minister Narendra Modi. During the meeting yesterday, the Prime Minister was briefed about various operational, administrative and infrastructural activities being progressed by the Indian Navy. He was assured of the Navy's commitment to remain combat ready at all times and to safeguard national maritime interests while focusing on Atmanirbharta in capability building. CNS Tripathi also informed the PM about various initiatives towards nation building, as well as the focus on training and welfare measures for all personnel and the emphasis on tri-service synergy by enhancing integration across various domains.
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी के संचालन की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही कौशल पारिस्थितिकी प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और पिछले दशक में 5,000 से अधिक संस्थानों को जोड़ने की दिशा में डीजीटी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आईटीआई की अपनी हिस्सेदारी है, लेकिन उन्हें नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है। श्री चौधरी ने भारत में कौशल विकास परिदृश्य को बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
A fire broke out of the heritage tourist spot of North Bengal, the Holong Bungalow, last night. As the bungalow was closed for tourists from 15th of this month, there was no report of any casualty. The cause of the fire is yet to be ascertained. However, as per the staff of the bungalow, the tourist lodge gutted down due to short circuit. It was situated outside the core forest area of Jaldarpada Forest Range.
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन सैकड़ों प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता निकालने के लिए नए प्रयास की घोषणा की है जिन्होंने अमरीकी नागरिकों से विवाह किया है लेकिन उन्हें कानूनी तौर पर देश में रहने का अधिकार नहीं है। इस कार्रवाई से लगभग 5 लाख प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने से बचाया जा सकेगा। नई नीति से उन लोगों को देश में रहने की अनुमति मिल जाएगी जो कम से कम 10 वर्ष से वहां हैं और किसी अमरीकी नागरिक से विवाह कर चुके हैं और उनके बच्चे भी हैं। ऐसे लोगों को देश छोड़े बगैर स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलेगी। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान श्री बाइडेन ने कहा कि ये आदेश इस वर्ष गर्मियों से लागू होगा। उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों की मदद होगी जो करों का भुगतान कर रहे हैं और हमारे देश के लिए तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए योगदान कर रहे हैं।
Relief from the scorching heat wave over North India is expected with the approach of a western disturbance in the region. IMD has forecast that heat wave to severe heat wave conditions prevailing over many parts of North India will gradually abate from today onwards.
और अब बात करते हैं खेलों की। पुरुषों की T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज से सुपर 8 मुकाबलों का दौर शुरू हो रहा है। इस दौर के सभी मुकाबले वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। सुपर 8 का पहला मुकाबला आज अमरीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। भारत अपना पहला मैच कल अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। प्रतियोगिता के इस चरण के लिए 8 टीम चुनी गई हैं। पहले समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं, जबकि दूसरे समूह में अमरीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका हैं। हर समूह की 2 शीर्ष टीमें सेमीफाइनल के लिए चुनी जाएंगी। सुपर 8 में सभी टीमों को 3 मैच खेलने होंगे और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 मैच जीतने जरूरी होंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली टीम विश्व कप से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीमें बारबाडोस में 29 जून को होने वाले फाइनल मुकाबले में भिड़ेंगी।
Olympic and world champion Neeraj Chopra has won the gold medal in men's javelin throw competition at the World Athletics Continental Gold Tour at the Paavo Nurmi Stadium in Turku, Finland. He topped an 8-man field with the best effort, 85.97 meter, last night. He began steadily with a throw of 83.62 meters. Local favourite Oliver Hillander pushed him for the lead, taking the top spot with an 83.96 meter throw in the second round. However, Chopra responded with his best throw of the day, a soaring 85.97 meter effort in his third attempt.
और अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरें तो सुभद्रा, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से आपके पास क्या खबरें हैं?
Yes, we're starting with Chennai news now. Associations of Surgeons of India, Tamil Nadu chapter, in collaboration with various health organizations, hosted the National Conclave on Quality Management and NABH Accreditation. Dr. Prabal Niyogi, President of the Association, presided over the conclave. The accreditation, recognized as India's gold standard in hospital management, was the focal point of the discussion. Niyogi said that the hospitals have to ensure high standards of patient care and safety. He said that the NABH accreditation not only reinforces the commitment to these standards, but also propels hospitals onto international stage. More news from Chennai. The global sports city is expected to transform Semancheri and Old Mahabalipuram Road. The Chennai Metropolitan Development Authority has invited tenders to select a consultant to conduct a techno-economic feasibility report and provide transaction advisory services for the development of the facility. The locality is expected to see significant development in real estate, including rental. Bengaluru news now. Union Minister for Steel and Heavy Industries, H.D. Kumaraswamy, held a meeting with Kudremukh Iron Ore Company Limited Chairman and Managing Director Ganti Venkatakiran and other senior officials in Bengaluru yesterday. The meeting discussed the prospects of mining iron ore in the Devadri area of Sandur in Bellary in Karnataka. In a statement later, the Union Minister said that mining in Sandur will not have an environmental impact. He assured that mining and forest conservation will go side by side. He highlighted the need to boost steel production, create jobs, contributing significantly to the GDP growth. He said it is the dream of Prime Minister Narendra Modi to realize the goals of Atmanirbhar Bharat and B. Vikas Bharat. The Devadri project is part of Prime Minister's 100-day agenda. Bengaluru, we have more news. The Sri Lankan cricketer Muthiah Muralidharan has shown a keen interest in investing 1,400 crore rupees in phases to establish a beverage and confectionery unit in Badanaguppe in Chamarajanagar district in Karnataka. The Large Medium Industries Minister in Karnataka, M.B. Patil, has informed that the Sri Lankan pace bowler, who has retired from international cricket now, has announced his interest in this project. To be named as Muthiah Beverages and Confectionaries, the unit will come up on 46 acres of land and begin operations by January next year. Once operational, the minister said that Muralidharan is also planning another unit in Dharwad and North Karnataka. Hyderabad News Now. Telangana State Government has taken up a project to upgrade the Industrial Training Institutes, ITIs, into advanced technology centres to make the students job ready. Chief Minister Revanth Reddy has laid the foundation stone for the new advanced technology centres at the ITI Malappally campus in Hyderabad yesterday. The project is aimed at upgrading 65 ITIs into ATCs. The state government, in a joint effort with Tata Technologies Limited, marks a significant step towards enhancing skill development and meeting the evolving demands of the industry. The Chief Minister's Office in a release said the state government will contribute over 300 crore rupees, while the TTL share will be over 2,016 crore rupees. Ansar Firozi, what about news from other places?
जी, शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में जल संकट बरकरार है। दक्षिण दिल्ली के खानपुर, संगम विहार, महरोली, वसंत विहार, ओखला, वसंत कुंज और चाणक्यपुरी समेत कई इलाकों में जल संकट देखा जा रहा है। इसके अलावा जल संकट उत्तर पश्चिम दिल्ली के नरेला और रोहिणी, पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, मोतीनगर, पटेल नगर और छतरपुर, उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर और मुखर्जी नगर और पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी, कृष्णनगर और शहादरा में भी देखने को मिला। स्थिति से निपटने के लिए सरकार गीता कॉलोनी, वसंत विहार और ओखला समेत शहर के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति कर रही है। आने वाले दिनों में पानी की कमी का असर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र पर भी पड़ने की संभावना है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार तिलक मार्ग और बंगाली मार्केट भूमिगत जलाशयों में आपूर्ति में कमी के कारण लुटियंस दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को आने वाले दिनों में कम पानी मिलेगा। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 8,647 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ये राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे अधिक मांग है। डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार पिछले महीने की 22 तारीख को पहली बार दिल्ली की अधिकतम बिजली मांग 8,000 मेगावाट तक पहुंच गई थी। इसमें कहा गया है कि दिल्ली की बिजली की अधिकतम मांग तब से कई बार 8,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर चुकी है। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने अपने अपने क्षेत्रों में बिजली की मांग को पूरा कर लिया है। और अब चल रहे हैं मुंबई की ओर, जहां निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 12 जुलाई को कराने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले 11 विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 2 कांग्रेस के पास, एक एक सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी और राष्ट्रीय समाज पार्टी के पास थी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 जुलाई है और नामांकन 5 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे। मतों की गिनती 22 जुलाई को होगी। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 3 भारतीय फिल्मों सहित 14 फिल्में इस साल सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के गोल्डन कॉन्च अवार्ड की दौड़ में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड के लिए कुल 25 फिल्में चुनी गई हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन श्रेणी की फिल्म शामिल हैं। डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को गोल्डन कॉन्च अवार्ड सहित 10 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म को सिल्वर कॉन्च अवार्ड और 5 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा नवाचारी या प्रयोगात्मक फिल्म को विशेष ज्यूरी पुरस्कार प्रमोद पति अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन के लिए तकनीकी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वहीं 5 फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय गैर प्रतियोगिता प्रिज्म खंड में प्रदर्शित किया जा रहा है। मध्य रेलवे ने इस साल 920 विशेष ग्रीष्मकालीन ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इन ट्रेनों की सवारी ढोने की क्षमता 111.10% है और इनके 10,89,000 यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। इनमें से 822 विशेष ट्रेनें पहले से चलाई जा रही हैं। 920 विशेष ट्रेनों में 353 ट्रेनें उत्तर प्रदेश, 205 बिहार, 84 गोवा, 36 पूर्वोत्तर, 74 महाराष्ट्र और 168 ट्रेनें केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान के लिए चलाई जाएंगी। और अब खबर है कोलकाता से। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 8 नई आयुष उपचार योजनाएं चलाई जाएंगी। ये नए उपचार क्षेत्र ब्लॉक और जिला स्तर और होम्योपैथी और आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में विकसित किए जाएंगे। इस संबंध में भर्ती प्रक्रिया 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी। योजना के तहत कैंसर, मधुमेह और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। राज्य के 75,000 से अधिक विद्यालयों में आयुष से जुड़ा पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
और आकाशवाणी गोल्ड पर अब वक्त हो चला है महानगरों के मौसम की जानकारी लेने का। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से, जहां आंधी तथा हल्की बारिश की संभावना है। यहां हवाएं तेज रहेंगी। अधिकतम तापमान 43 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और सुभद्रा, आपके पास मौसम की क्या जानकारी है?
Yes, Afrozi, I have news from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 29 degrees Celsius, maximum will be around 34. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius, maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees Celsius and a maximum of 34 degrees Celsius. And so friends, today is World Sickle Cell Awareness Day, a blood disorder that affects millions of people worldwide. The abnormality leads to a shortage of red blood cells that in turn can cause severe complications. There is no cure for sickle cell anemia, but then early diagnosis and appropriate treatment can help SCD patients live longer, healthier lives. And this day is dedicated to educating the public about SCD and its impact on individuals' lives. And also on World Sickle Cell Day today, Vice President Jagdeep Dhankar will attend a state-level program organized in Dindori, Madhya Pradesh. This program will be organized at Government Chandra Vijay Mahavidyalaya Dindori at 11 a.m. Governor Mangubhai Patel, Chief Minister Dr. Mohan Yadav, and ministers of the state government will also be present in the program. Sickle cell disease is a genetic disorder in which red blood cells change into a sickle shape, due to which, of course, there is a shortage of healthy red blood cells and blood flow can be blocked. So beware of this disease, friends. And now, Sir Frozi, let's go on to our events.
Bilkul. 1269 में फ्रांस के राजा लुई ने सभी यहूदियों को एक खास बैज पहनने का हुक्म दिया।
And today is 19th June, observed by many as Juneteenth, a holiday celebrated by people of African descent in the United States, as well as people in Canada, Jamaica, Nigeria, and United Kingdom, and other countries throughout the world. Juneteenth, also known as Freedom Day, it commemorates the end of slavery in the United States, 1865.
और 1948 में आज ही यानी 19 जून के दिन सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की ओर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया।
1934, the first movie of the sun, other than of eclipses, was made at the McMath-Hilbert Observatory at Pontiac, Michigan. 1949, people of Chandernagar, the French Indian settlement, decided to merge with the Indian Union. And 1961, this day, Great Britain recognized Kuwait's independence. 1963, Soviet cosmonaut Valentina Tereshkova, the first woman to travel in space, returned to Earth in the spacecraft Vostok 6.
और 1981 में आज ही के दिन भारत ने अपने भूस्थैतिक उपग्रह या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एप्पल का सफल प्रक्षेपण किया और 1991 में सोवियत संघ ने हंगरी को आज ही के दिन अपने कब्जे से आजाद किया।
1999, the people's bus from Calcutta rolls into Dhaka and is formally received by Prime Minister and his Bangladesh counterpart.
और 2005 में आज फोर्ब्स पत्रिका ने ओपरा विन्फ्रे को दुनिया की 100 ताकतवर हस्तियों की सूची में पहला स्थान दिया। और अब श्रोताओं आपको बताएंगे उन मशहूर हस्तियों के बारे में जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या हमसे विदा हुए। शुरुआत कर रहे हैं गुरु प्रसाद मोहापात्रा से जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये भारतीय आईएएस अधिकारी थे। ये उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग केंद्र सरकार में शीर्ष नौकरशाह के रूप में कार्यरत थे। गुरु प्रसाद मोहापात्रा ने साबरमती रिवरफ्रंट सहित कई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अहमदाबाद में मॉडल सड़कों की शुरुआत की। आईएएस अधिकारी गुरु प्रसाद मोहापात्रा को भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया।
1623, birth anniversary of Blaise Pascal, French mathematician and physicist, was a child prodigy. He laid the foundation for the modern theory of probabilities in hydrodynamics. He formulated what came to be known as Pascal's law of pressure and invented the syringe and hydraulic press. Pascal invented the first digital calculator to help his father with his work of collecting taxes. He worked on it for 3 years, and the device called Pascaline resembled a mechanical calculator of the 1940s.
और आज ही पुण्यतिथि है निरेला वेणु माधव की। ये भारतीय मिमिक्री कलाकार थे। सन 1971 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में ये एमएलसी के रूप में कार्यरत थे। ये संयुक्त राष्ट्र में अपने उत्साही प्रदर्शन के बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर पहुंचे। निरेला वेणु माधव ने 2001 में पद्मश्री समेत कई और पुरस्कार प्राप्त किए। इन्हें भारतीय मिमिक्री का जनक भी माना जाता है।
The very famous Canadian-born American guy, Lombardo, was more than just an orchestra leader. He was an institution. He presented the kind of music that the general public wanted to hear and to which they wanted to dance, what he called the sweetest music this side of heaven. Lombardo, who entertained fans with his 16-member orchestra, Royal Canadians, was born this day in 1902.
Hop a little on your little left shoe. You hop a little on your right one, too. You kick a button like the Scotch kids do. That's a hop, Scotch polka. Oh, you hop a little on your little left shoe. You hop a little on your right one, too. You don't mind bouncing like a kangaroo. So a hop, Scotch polka.
It's in and out among the maple trees. It's up and down and then you wave your knees. Your head goes bobbing in the morning breeze to the hop, Scotch polka. Oh, you hop a little on your little.
After Hopscotch Polka, it's the turn of some bluegrass guitar player and singer Lester Flatt was born this day in 1914. Along with banjoist and music partner Earl Scruggs, Flatt formed Foggy Mountain Boys and thrilled country fans with that pure bluegrass sound, pure instrumental fun. Here it is.
Thank you.
श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है सुभाष मुखोपाध्याय की। ये भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। ये विश्व के दूसरे और भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक थे। ये डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का दुर्भाग्य था कि इनकी इस सफलता को मान्यता नहीं दी गई। सुभाष मुखोपाध्याय अपनी सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रख पाए। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अपने इस कार्य का श्रेय दिया गया। और श्रोताओं, इसी विषय पर 1990 में प्रख्यात फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा ने एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत।
Computer scientist, information technology pioneer and leader Dr. Amiya Kumar Pujari was born this day in 1948. He took an interest in science, mathematics and engineering from very early age. He derived inspiration from scientists, poets, writers and freedom fighters of India. We also remembering Sir William Gerald Golding, popularly known as William Golding, English novelist, who in 1983 won the Nobel Prize for Literature for his Parables of Human Condition. He attracted a cult followers, especially among the youth of the post-World War II generation. Golding passed away this day in 1993 at the age of 81.
और अब बात कर रहे हैं आशीष विद्यार्थी की, जो भारतीय अभिनेता हैं। इनका आज जन्मदिन है। इन्होंने 1994 में आई फिल्म द्रोहकाल से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिल्म में निभाई सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। हालांकि सुभद्रा, इन्हें ज्यादातर हिंदी फिल्मों में विलन का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1996 में आई फिल्म इस रात की सुबह नहीं में एक नेगेटिव रोल प्ले किया, जिसके लिए इन्हें स्टार स्क्रीन अवार्ड दिया गया। और इनका टैलेंट सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इन्होंने 11 भाषाओं की 300 फिल्मों में काम किया है। और आइए इनके जन्मदिन के मौके पर सुनते हैं इनकी एक और मशहूर फिल्म घायल से ये डायलॉग।
साहब ले आए उसे। तो तू है, बहुत बुखार चढ़ा है तुझे आशिकी का, दिख रहा है। एक बार ये फिर गया ना तो चमड़ी का रोम रोम भारत माता की जय बोलेगा, समझा क्या? तेरे जैसों का जुग्राफिया मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं।
And friends, 1901, birth anniversary of Raj Chandra Bose, Indian-American mathematician, statistician, best known for his work in design theory. And Anne Wilson of the rock band Heart celebrates her birthday today. Anne wrote songs besides singing lead for Heart alongside her sister Nancy. She also plays the flute and of course the inimitable guitar. One big hit single of hers, this is of the Heart, of course, the band, These Dreams for Birthday Girl Anne Wilson.
और आज ही ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार सलमान रुश्दी का भी जन्मदिन है। इन्हें लोग इनके उपन्यास मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए जानते हैं, जो कि 1981 में आया था और इसे उसी साल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी भारत की आजादी से 2 महीने पहले मुंबई में पैदा हुए। ये 14 साल के थे जब इन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। बाद में इन्होंने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स की डिग्री ली और उपन्यास लिखने का काम शुरू कर दिया। इनके पहले उपन्यास ग्राइमस को खास कामयाबी नहीं मिली, हालांकि दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन ने इन्हें लेखक के रूप में स्थापित कर दिया। इसकी 5 लाख से अधिक प्रतियां भी की और इसी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी दिया गया। तो आइए सुनते हैं उनकी बुकर पुरस्कार प्राइज विनिंग स्पीच।
I have to say I'm very excited. This is just a marvelous moment for me and for Midnight Children, and I'm slightly lost for words, which I usually am not. I was thinking back to the younger self who was writing Midnight Children back in the late 1970s, and how astonished that hopeful young writer would be.
And friends, today is the birthday of singer-dancer Paula Julie Abdul, born in California. After working as a cheerleader and choreographer, she launched a pop music career that spawned hits like Straight Up, Forever Your Girl, and Opposites Attract.
और दोस्तों अब समय है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और सुभद्रा रामचंद्रन को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नाउ विद समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन। फॉलो द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।